हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। आज के इस रविवार की दोपहर को यामिनी के विवाह के स्वागत समारंभ में आपका सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा राधानाथ जी के मंदिर में बैठे हुए बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि श्री श्री राधा राधानाथ जी, राधा और राधानाथ जी, श्री कृष्ण भगवान, इनका यहाँ पर होना ये बड़ी ऐतिहासिक बात है। इसमें बहुत सालों का इतिहास छुपा हुआ है, सब भक्तों का मेहनत और कष्ट और उनका निश्चय, उनका समर्पण, इसकी वजह से आज आप इस सुंदर मंदिर में बैठे हो। तो हम भगवान का और प्रभुपाद जी का लाख लाख धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कितनी खुशी की बात है। जब कोई बीज डालते हैं तो उसको, आम का बीज डालते हैं तो उसके शायद 10 साल बाद में उसको आम निकलता है। तो जो उसने आम डाला, बीज डाला, वो शायद रहे ना रहे, लेकिन कुछ लोग जब थे, जब वो आम डाला गया था, उनको सब याद आता है कि कैसे, किस स्थिति में उसको बीज डाला था और कैसे उसका जल दिया था, और आज इतना बड़ा पेड़ हो गया है और उसमें कई सारे फल लगे हैं, सब लोग उसका आनंद ले रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और पालघर बोईसर मनोर विभाग में श्री कृष्ण भावना बड़े अच्छे से फैल रही है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य यह है। सब लोग मनुष्य बनकर आए हैं, केवल इंद्रियों का भोग करने के लिए नहीं आए। इंद्रियों का भोग तो के जानवर भी करते हैं, कुत्ता बिल्ली भी करते हैं, सुअर भी करता है, मछली भी करती है, सब लोग शरीर का भोग लेते हैं। वास्तविक दृष्टि में देखा जाए तो केवल शरीर का भोग लेने के लिए ये बाकी योनियां बनी हुई है, लेकिन मनुष्य का शरीर जो है वो भगवान की प्राप्ति के लिए दिया गया। अपने शरीर को बहुत ज्यादा नुमाइश करके उसको भोग के लायक बनाने के लिए नहीं बनाया। भोग तो इसमें है, बहुत सारा आनंद भी उसमें मिलता है, लेकिन उद्देश्य उसका क्या है कि शरीर के यंत्र के माध्यम से हम इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति करें। इसलिए मनुष्य जीवन में, केवल मनुष्य के जीवन में संस्कारों का वर्णन भी किया गया है। आपने कभी देखा है क्या, कुत्ता बिल्ली का विवाह संस्कार होता है, जाति संस्कार होता है, कभी देखा है? कुछ नहीं होता है। केवल मनुष्य के जीवन में जन्म संस्कार है, नामकरण विधि है, फिर जाति संस्कार है, फिर उपनयन संस्कार है, दीक्षा होती है, दोबारा जन्म होता है दीक्षा के समय, फिर विवाह संस्कार है, फिर संन्यास संस्कार है, वानप्रस्थ संस्कार है, 55 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं केवल मनुष्य के लिए, जानवरों के लिए नहीं बताए गए। यहां तक कि गर्भाधान संस्कार भी बताया गया है। गर्भधारणा करने के पहले एक संस्कार होता है, ताकि भगवान की कृपा बालक के रूप में हमारे जीवन में प्राप्त हो, इसके लिए गर्भाधान संस्कार बताया गया है। इतने सारे सुंदर सुंदर संस्कारों की योजना भगवान ने बनाई है, ये सब समझने के लिए कि ये जीवन मनुष्य का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन्म जायते शुद्रा संस्कारात् भवेद् द्विज, जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं। आपको लगेगा बड़े प्रभु जी कठोर बात कर रहे हैं, जो संस्कार के बिना जन्म होता है जिसका, उसका जन्म शूद्र माना गया। कोई बात नहीं, अगर इस जन्म भी हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन संस्कारात भवे द्विज, जब जन्म के बाद संस्कार होते हैं तो फिर वो द्विज बन जाता है, यानी कि उसका दोबारा जन्म होता है भगवान की भक्ति में। और जब वेद और उसमें पारंगत हो जाता है तो वो विप्र कहलाता है। विप्र यानी कि जो वेदों के ज्ञान में पारंगत हो गया है, और उसके आगे भक्त की पदवी है, द्विज ब्राह्मण विप्र, और उसके आगे भगवान का भक्त है वैष्णव। ये सब बनने के लिए जीवन दिया है, और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका अंतिम लक्ष्य जो है वो भगवान की प्राप्ति है। इसलिए विवाह संस्कार तो बहुत सारे होते हैं दुनिया में, लेकिन सफल विवाह संस्कार वो है जो जीवन के अंत में भगवान के धाम में प्रवेश करने के योग्य बनाए। भगवान ने चार वर्ण, चार आश्रम बनाए हैं। भगवत गीता में कहते हैं चतुर्वर्ण्यम माया सिष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के अनुसार चार वर्ण और चार आश्रम होते हैं। एक है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और ये चारों वर्णों का और चारों आश्रमों का केवल एक ही उद्देश्य है, वह भगवान की प्राप्ति। एक ही उद्देश्य है बस, ऐसा नहीं कि केवल सन्यास लोग ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और गृहस्थियों के लिए वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। ब्रह्मचारी आश्रम में भी इसी उद्देश्य ब्रह्मचारी बना जाता है कि मैं भगवान की प्राप्ति करती हूँ। वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम भी उसका उद्देश्य यही है। आश्रम का मतलब क्या होता है? जिस जगह पर भगवान केंद्र स्थान में होते हैं उस जगह को आश्रम कहते हैं। वहां पर लोग आकर भगवान के लिए श्रम करते हैं, उसको आश्रम कहा गया है। तो गृहस्थ आश्रम यानी कि जिस जगह पर पति पत्नी एकत्र होते हैं और भगवान को केंद्र स्थान में रखकर अपने जीवन को चलाते हैं। दो अलग अलग प्रकार के भिन्न जीव एकत्र होते हैं और अलग अलग विचार प्रवाह होते हैं, स्वभाव स्वभाव होता है, किसी की चाह अलग है, किसी की चाह अलग है। ऐसे भिन्न प्रकार के लोग विवाह बंधन में एकत्र आ जाते हैं, लेकिन अगर उसमें केंद्र स्थान में कृष्ण है और कृष्ण भक्ति के लिए ही एकत्र हुए हैं तो ये संस्कार परिपूर्ण हो जाता है। आम जनता क्या करती है? शरीर की भूख के लिए विवाह करते हैं, इसमें बहुत आनंद है, उसमें कुछ गलत नहीं है। भगवान के भक्ति के मार्ग में अगर संतति उत्पन्न करने के लिए हम शरीर का भोग लेते हैं तो भगवान भी उसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो पुत्र होगा या पुत्री होगी उसको भी हम भगवान के रास्ते में मार्गदर्शन करते हैं, प्रेरणा देते हैं और सहायता भी करते हैं। तो ये जो गृहस्थ आश्रम है इसमें और गृह मेदी लोगों में बहुत अंतर है। बाकी लोग केवल विवाह करते हैं, मुझे क्या मिलेगा उसमें, पत्नी सोचती है मुझे क्या मिलेगा, पति सोचता है मुझे क्या मिलेगा। जब तक मुझे क्या मिलेगा वो मिल रहा है तब तक वो चलते रहता है, जिस समय मुझे क्या मिलना चाहिए था वो मिलना बंद हो जाता है तो वहीं पर डाइवर्स हो जाता है, घटस्फोट। लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, ऐसा ही आजकल का तरीका है। क्योंकि जो नींव है गृहस्थ आश्रम की वो केवल भोग पे आधारित है, मुझे क्या मिलेगा, व्हाट आई विल गेट। जब तक हम ये समझते नहीं है कि हम विवाह संस्कार में एकत्र क्यों हो रहे हैं, भगवान की सेवा करने के लिए हो रहे हैं, तो उसमें त्याग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग रखता है, एडजस्टमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण अंग रखता है। क्योंकि दो विभिन्न प्रकार के स्वभाव के लोग एकत्र होते हैं तो मतभेद और अलग अलग प्रकार के विचार धारणा होना संभव है। हो सकता है हर समय मेरे मन की जैसे नहीं होगी, हो सकता है हर समय आपके मन के जैसे नहीं होगा। तो विवाह संस्कार का ये जो बंधन है ये अगर टिकना चाहिए तो उसके लिए एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है, और वो एडजस्टमेंट के लिए बहुत ही प्रगल्भता यानी मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। प्रेम वो वस्तु है जिसमें हम जिस पर प्रेम करते हैं उसके आनंद के बारे में सोचते हैं। प्रेम का मतलब यह नहीं कि इस प्रेम के संबंध में मुझे क्या मिलेगा, प्रेम मतलब मैं जिस पर प्रेम करता हूँ या करती हूँ उसका आनंद किस में है। अगर दोनों व्यक्ति ये सोचते हैं कि हाउ विल आई प्लीज माय पार्टनर, क्या ऐसे करूं मैं जिससे मेरे पत्नी को या पति को आनंद मिले, समाधान मिले, जब दोनों ऐसे सोचते हैं तो विवाह बंधन में कभी बाधा नहीं आती, चिरंतनकार आप सुख का अनुभव कर सकते हो। क्योंकि विवाह बंधन में सुख का अनुभव आप अपेक्षा लोग करते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, वी वॉन्ट टू बी हैप्पी इन गृहस्थ आश्रम। लेकिन उसमें अगर आपको सही में सुखी होना है तो सबसे पहले है सैक्रिफाइस, मेरी जो बात है मेरे स्वार्थ की वो मैं त्याग देता हूँ मेरे पत्नी के लिए या मेरे पति के लिए या मेरे बालकों के लिए। जब ये भावना आएगी तो जीवन में आनंद ही आनंद है, आप सालों साल गृहस्थ आश्रम में जी सकते हो। क्योंकि तो उसकी नींव है दूसरे के लिए जीना, ब्रह्मचर्य आश्रम का भी यही नियम है, मुझे ब्रह्मचारी बनकर क्या मिलेगा उससे ज्यादा मुझे भगवान के लिए मेरे आश्रम का उपयोग करना है। तो इसलिए पति पत्नियों को विवाह बंधन में जुड़ने के पहले होता ना ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि वो अच्छी दिख रही है मैं भी अच्छा दिखता हूँ, दोनों को अच्छा लगा पसंद आ गए शादी हो गया, बहुत जल्दी ये रिश्ता टूट सकता है। अगर ऐसे हम केवल देखने मात्र से अच्छा लगा तो कुछ दिन के बाद में वो सब खत्म हो जाता है, कुछ बचता नहीं है, 10 साल हो गए तो फिर एक बच्चा हो गया तो सब सौंदर्य खत्म हो जाता है। तो क्या देख के किया था वो तो बहुत समय के लिए टिकने वाला है नहीं, तो उसके आधार पर अगर अपना रिश्ता बना हुआ है तो निश्चित ही वो टूटने वाला है। हमको आत्मा का सौंदर्य देखना चाहिए कि आत्मा के अंदर गुण क्या है, स्वभाव क्या है, विचारधारा क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको समझ कर अगर एकत्र आते हैं तो लंबे अरसे तक खुशी से रह सकते हैं। इसलिए पति पत्नी का कर्तव्य क्या है समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम भागवत का एक श्लोक बताएंगे, जो श्लोक में कहा गया है कि पति पिता राजा और गुरु किसको बनना चाहिए। वो कहते हैं भागवत में लिखा गया है ऋषभदेव राजा अपने पुत्रों को बता रहे हैं, पिता न सस्याद जननी सस्याद गुरु न सस्याद। जब तक हमारे ऊपर निर्भर जो व्यक्ति है उसको हम भगवान के रास्ते में प्रोत्साहन नहीं देते हैं, उसके जीवन का उद्धार करने का कार्य नहीं सोचते हैं, हमारे ऊपर जो निर्भर है जैसे कि माता पिता के ऊपर बच्चे निर्भर हैं, राजा के ऊपर प्रजा निर्भर है, गुरु के ऊपर शिष्य निर्भर है और पति के ऊपर पत्नी निर्भर है, तो तब तक आप लोगों को हमको पति और पति और पिता बनने का अधिकार नहीं है, जब तक पत्नी और बालक इनको भगवान के रास्ते पर जब तक हम स्थिर नहीं कर सकते उतनी हमारे अंदर क्षमता नहीं है तो हमको विवाह करने का कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्रीमद् भागवत में भगवान बोल रहे हैं, भगवान के अवतार ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश कर। पिता न सस्या जनन्य सस्यात, एक औरत को माता बनने का भी अधिकार नहीं है, अगर उसके होने वाले बालक को वो भगवान की भक्ति नहीं दे सकते हैं और ये नहीं निश्चित कर सकते हैं कि जीवन के अंत में ये बालक भगवान की प्राप्ति करेगा, ऐसा अगर आपको नहीं लगता है तो उनको विवाह करने का कोई अधिकार नहीं। हमारे प्रभुपाद जी गुरु महाराज थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे वो, इनके शरीर से जीवन भर में एक बार भी वीर्य निकला नहीं, ऐसे पावरफुल ब्रह्मचारी थे वो। वो कहते हैं कि मैंने ब्रह्मचर्य क्यों स्वीकार किया, क्योंकि विवाह करके संतति को कृष्ण भावना देने की समर्थता मुझे नहीं थी, ऐसे वो नम्रता से कहते थे। अगर मुझे ये शक्ति थी कि मैं किसी एक बालक को भगवान का भक्त बना सकता था तो मैं 100 बार विवाह करता। ये तो उनको नम्रता है, उन्होंने तो हजारों शिष्य बनाए, सबको बालक की तरह मार्गदर्शन किया और भक्त बनाया। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है, वो कह रहे हैं कि अगर हम विवाह कर रहे हैं तो हमारी पत्नी जो हमारे ऊपर निर्भर होने वाली है होती है और जो बालक होने वाले हैं उन सबको भगवान के रास्ते पर प्रेरणा देना और भगवान के भक्त बनाना और उनको भगवान के धाम में जाने के योग्य बनाना भगवान की प्राप्ति कराने के लिए। जब तक ये नहीं हो सकता है तब तक हम केवल द्विपद पिशु हैं, मतलब 2 पैर के जानवर हैं। ये भी श्रीमद् भागवत में लिखा है, कृष्ण की भक्ति बिना ये जीवन जो है वो जानवर के समान है। इसमें कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करना है, जब कृष्ण की भक्ति स्वीकार करेंगे तो जैसे मुर्दा चलने लगता है जवान जीवित होकर, जीवत शव समान, मतलब जो जीवत होकर भी भगवान का भक्त नहीं भक्ति नहीं करते हैं वो शव समान माना गया उनको, और जो भक्ति करते हैं उनको जीवित माना गया है। और ऐसे ही जीवित लोग ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, बाकी सब इंद्रिय भोग करके नरक में चले जाते हैं। आज मनुष्य की प्राप्ति हुई है बड़े भाग्य से, लेकिन फिर भी इंद्रिय भोग के माध्यम से सब लोग नरक का रास्ता काटते हैं। इसलिए पति का कर्तव्य है सबसे पहले कि वो अपने पत्नी को अन्न वस्त्र निवारा, भोजन वस्त्र रहने की जगह प्रदान करें, शरीर की देखभाल करें, आरोग्य भोजन, और साथ साथ में भगवान के भक्ति के मार्ग में उसको मार्गदर्शन करें। ये हस्बैंड की ड्यूटी है। हमारे शादियों में ये जो वचन है, मैरिज के वचन जो होते हैं वो केवल भटजी लेते हैं, और पति पत्नी कल क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं, उनको पता नहीं क्या वो कौन सा वचन लिया जा रहा है। तो ये वचन का अर्थ ये है कि आई विल प्रोटेक्ट दिस वुमन फिजिकली इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। हर समय उसको भावना से, मन से और शरीर से सुरक्षित वातावरण निर्माण करने का कार्य मेरा है। होने वाली पत्नी को मैं हमेशा सुरक्षित भावना में रखूंगा, सिक्योर कंडीशन। और सिक्योरिटी कई चीजों की होती है, एक धन की होती है, एक शरीर के आरोग्य की होती है, एक भावना की होती है। ऐसा नहीं कि सब कुछ है लेकिन सब लोग उसको त्रस्त कर रहे हैं, तो भावना से वो त्रस्त है, शी इज डिस्टर्ब्ड इमोशनली। कोई सासू है, कोई ससुर है, कोई भाई है, कोई नंदी है, कोई नेबर है, परेशान है। तो आश्रय के लिए और आश्रय के लिए पत्नी हमेशा पति को देखती कि ही विल प्रोटेक्ट मी। कहीं भी कहीं संकट आता है तो पति पत्नी पति का सहारा लेती है। तो पति को ऐसा सक्षम होना चाहिए कि जिसके सहारे पत्नी हमेशा आश्वस्त रहे, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। और साथ साथ में पत्नी के जीवन में भगवान की प्राप्ति के लिए क्या क्या आवश्यक है वो सारे साधन जोड़ना पति का कर्तव्य है। अगर यात्रा में जाना जरूरी है तो ले जाना है, अगर भोजन खिलाना है जरूरी है, भगवान का भजन पूजन के लिए साहित्य लाना है, मंदिर बनाना है भगवान के लिए, जो भी आवश्यक है जिससे दोनों की भक्ति बढ़े वो करना पति का कर्तव्य है। और जब तक घर में केंद्र स्थान में भगवान को नहीं रखेंगे तब तक वो गृहस्थ आश्रम बन ही सकता नहीं। जी किस ले रहे हैं हम लोग, भगवान के लिए जी रहे हैं। कमा ले, कमा किस ले रहे हैं, भगवान के लिए कमा रहे हैं। घर में आते हैं तो उनकी सेवा के लिए कमाकर उनको भोग लाकर भोग अर्पण करते हैं, आरती पूजा करते हैं, बच्चों को भी वही संस्कार देते हैं। ये पति का परम कर्तव्य। और पत्नी का कर्तव्य क्या है कि पति को आदर करे, सम्मान करे पति का, कभी भी अनादर पूर्वक बात न करे, नेवर डील विथ हस्बैंड डिसरिस्पेक्टफुली। प्रेम और देखभाल प्रदान करे, उतना ही कर्तव्य पति का भी है, पत्नी को प्रेम और देखभाल प्रदान करें, लव एंड केयर। तो लव एंड केयर दोनों में कॉमन है, दोनों को एक दूसरे की देखभाल और प्रेम व्यतीत करना चाहिए। और प्रेम आत्मा के लिए होना चाहिए, शरीर के सौंदर्य के लिए नहीं होना चाहिए। ये जानते हुए कि अगर शरीर पे सौंदर्य पे प्रेम करेंगे तो कुछ दिन वो सौंदर्य नष्ट होने वाला है। जब स्वभाव से एकत्र होते हैं, मन से एकत्र होते हैं, एक मन हो जाते हैं, एक जीवन का उद्देश्य बनता है, तब प्रेम और देखभाल पैदा होती है, एंड लव एंड केयर इज प्रोड्यूस्ड। और साथ साथ पत्नी का कर्तव्य है कि पति के भगवत सेवा में, इन द सर्विस ऑफ गॉड ऑफ द हस्बैंड, जो पति भगवान की सेवा कर रहा है उसको सहायता करना, एक नम्र सेवक, एक नम्र सहायक के रूप में, ये पत्नी का प्रथम कर्तव्य है। इस तरह से जब पत्नी रहती है तो पत्नी मन से भी और शांत रहती है, उद्विग्न नहीं रहते हैं, शी इज नॉट डिस्टर्ब्ड व्हेन शी हम्बली असिस्ट द हस्बैंड इन सर्विस टू गॉड। दोनों का मिलकर कर्तव्य क्या बताया, पहले बताया लव एंड केयर, और दोनों का कर्तव्य यह है कि भगवान की भक्ति में अच्छी साधना करें। साधना का मतलब क्या है, भगवान के नाम का जपना, चार नियमों का पालन करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के धाम में यात्रा करना, वैष्णवों की सेवा करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। साधना के अंदर ही आता है वैष्णवों की सेवा। जिस घर में गृहस्थी में भगवान के भक्तों का आना जाना नहीं होता है उसको बड़ा दुर्दैवी माना गया है, वेरी अनफॉर्चुनेट हाउस वेयर नो डिवोटीज गो। भगवान के भक्तों का आना जाना होना चाहिए, संतों का आना जाना होना चाहिए, क्योंकि संतों की कृपा जो है गृहस्थ आश्रम में बड़ी आवश्यक है। संत की कृपा नहीं है तो आपके गृहस्थी में हमेशा क्लेश झगड़े चलते रहेंगे। संतों की सेवा करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो जीवन में आनंद प्राप्त करेंगे। तो इसलिए वैष्णवों को बुलाइए अपने घर पे। आज का कार्यक्रम भी इसी के लिए है, मेरे समारंभ में वैष्णवों को नहीं बुला सके, इसलिए आज खास वैष्णवों के आशीर्वाद के लिए ये समारोह किया गया है। तो वैष्णवों का भी कर्तव्य है, जो रिश्तेदार है, वरिष्ठ उनके रिलेटिव्स हैं, सबका कर्तव्य है कि वो उनके वैवाहिक और आध्यात्मिक जीवन के उन्नति के लिए उनको आशीर्वाद दें, मन से आशीर्वाद दें, शुभेच्छा दें, शुभकामनाएं दें, ताकि आपका गृहस्थी जीवन भगवान की भावना में प्रसन्न रहे, आनंदी रहे, सुखी रहे। हम हृदय से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों का गृहस्थी जीवन आनंद से भरा रहे, भगवान की भक्ति से भरा रहे, समंजस भाव से भरा रहे, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग में रहे, और मतभेद जब होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती। मतभेद तब होता है जब दो व्यक्ति होते हैं, तो मतभेद नेचुरल है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी मतभेद होता है तो उसको बड़ी गंभीरता से मत लो, डोंट टेक इट सीरियसली। दुनिया में बड़ी और बातें हैं जो गंभीरता से ले सकते हैं, लेकिन रिश्ता जो है उसको अगर सफल बनाना है तो फॉरगेट एंड फॉरगिव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारा चीज याद रखेंगे जीवन में और कभी उसको माफ नहीं कर पाएंगे किसी को, तो हमें कैसी माफी मिल सकती है? अगर हम दूसरे की गलती को माफ नहीं कर सकते हैं तो हमारी गलती कैसे माफ होगी? फॉर दिस पर्पज वी शुड बी रेडी टू फॉरगेट एंड फॉरगिव। ये बड़ा एक मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, माफ करना, किसी मन में रखना नहीं, उसको भूल जाना, उसको मन में बहुत बोझ बढ़ता है उससे। हाँ, आदमी उदास रहता है जब भी किसी के अपराध को लेता है, उसको माफ नहीं कर सकता है, उसका हृदय बड़ा भारी रहता है, हमेशा परेशान रहता है आदमी, किस किस को याद करते रहता है कि ऐसा हुआ था 5 साल की उम्र में, शादी के समय पे ऐसा हुआ था, हाँ इसने सासू ने गहना तुरंत ले लिया और ऐसा किया, और वो दहेज में वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, ऐसी 50 बातें लाइफ में होती रहती है। लेकिन इनको इतना ज्यादा महत्व तो देना नहीं चाहिए, सबको भूल जाना चाहिए। वो भूल जाने से क्या होता है, सबसे पहले हमारा मन हल्का होता है, वी बिकम फर्स्ट पीसफुल, वी बिकम वेरी हैप्पी एंड पीसफुल। इसलिए वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। ये अगर आपने अपना लिया जीवन में फॉरगिवनेस, तो आपका गृहस्थी 90% सक्सेसफुल है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत है और दोनों के स्वभाव में अंतर है तो कुछ ना कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मीठा अच्छा लगता है, आपको तला हुआ अच्छा लगता है, आपको छाछ अच्छा लगता नहीं है, हमको छाछ अच्छा लगता है, ऐसे कई बातें जीवन में होती है। आपको गर्मी बहुत सहन नहीं होती तो उनको सर्दी सहन नहीं होती है, तो गर्मी में आप बोलेंगे एसी लगाओ तो बोलते नहीं मुझे बदन अखड़ता है, ऐसा होता रहता है सबके जीवन में, सबके जीवन में होता है। दो स्वभाव जब साथ में आते हैं तो कई प्रकार के अंतर उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ में होते हुए भी अगर हम उनको एकत्र देखते हैं तो उसमें कोई अचीवमेंट है ना। किसी के 60th विवाह संस्कार के एनिवर्सरी मनाने को हम जाते हैं और वो 60वीं सालगिरह में भी हंसते हुए आनंदी परिवार नजर आता है, तो जरूर समझना कि दोनों ने एक दूसरे को बहुत टॉलरेट किया है। हाँ, नेचुरल है, वो झगड़ा होता भी है तो भी टॉलरेट किया है और कुछ समय के बाद उसको भूल गए हैं। जब नया सूरज निकलता है अगले दिन का, तो पिछले दिन का जो मतभेद था वो उसको गाड़ दिया है, और नए सूरज की किरण के साथ में नया जीवन और नया दिन गृहस्थी का जीने के लिए उत्सुक है, ईगर टू एक्सेप्ट रिसीव द नेक्स्ट डे विद नेक्स्ट सनलाइट कमिंग हैप्पीली टू सर्व द लॉर्ड। जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तब तक हम किसी को माफ नहीं कर सकते। भगवान के नाम के जप करने के बाद ही ऐसा हमारे मन में प्रवृत्ति उत्पन्न होती है कि बाय द वे आई फॉरगिव यू, मैं आपको माफ कर सकता हूं, भूल जाइए, फॉरगेट इट, और रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो इसलिए जीवन में केंद्र स्थान में भगवान को रखना बहुत जरूरी है। जब तक हम और आप केंद्र स्थान में हैं तब तक झगड़ा निश्चित है। तो कलयुग है ना, कलयुग के अंदर क्लेश जो है और कलह जो है सब जगह प्रादुर्भाव है उसका, प्रचुर मात्रा में। झगड़े के लिए कोई कारण लगता नहीं, लेकिन साथ रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आपको भगवान के सामने बैठकर हृदय से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इस कला में बहुत निपुण हो जाएं। लेट यू बी एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ फॉरगिविंग, इन द आर्ट ऑफ लविंग ईच अदर विद ग्रेट लव, विद ग्रेट फीलिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग। हम सबको ये करना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल उनके लिए हम कामना कर रहे हैं। यहां पर बैठे हुए बहुत लोग गृहस्थी हैं, कितने लोग गृहस्थी हैं हाथ ऊपर करो। हाँ, आपके घर में पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, और जो मैं बोल रहा हूं उसका आपको मन में लगता होगा ना कि ये सही है क्योंकि मैं भी ये पति हूं ना किसी का, मेरा भी विवाह हो चुका है मेरे घर में बच्चे हैं और बहुत साल हो चुके हैं उसको तो अगर लंबे समय तक हंसते हुए रहना है तो आपको माफ करना सीखना है। अगर माफ नहीं कर पाएंगे तो हमें माफी नहीं मिलेगी। और ये याद रखना कि जिस चीज के लिए आप किसी और को माफ कर रहे हो वो चीज हमारे अंदर भी है। जिस अपराध के लिए हम किसी को ओके बोल रहे हो वो चीज हमारे अंदर भी है। जब हम लोग किसी को माफ करेंगे तो हमको भी माफी मिलेगी। क्षमा जो है सबको चाहिए होती है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी फॉरगिवन। तो पहले अपने आप से शुरू करना चाहिए कि आई विल फॉरगिव, फिर तुरंत आपको माफी मिल जाएगी। It is in receiving yet you receive. Giving, when you give, you receive. है ना? तो पेड़ होता ना पेड़, वो अपने आप को पहले आपको आम देता है, फिर भगवान उस पेड़ को और आम देते हैं। अगर पेड़ बोलेगा मैं किसी को आम नहीं दूंगा, मेरे पास रखूंगा, तो उस पर नए आम नहीं आएंगे, जो है वो वही उसी जगह पर सड़ जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, उस जगह पर नए आम नहीं आएंगे। जब आप उस पेड़ ने आपको आम दिया तो उस जगह पर नए आम आ जाते हैं। तो जब आप देते हो तो आपको प्राप्त होता है, इसलिए प्रेम पहले दो फिर आपको मिलेगा। अगर पति बोलेगा कि पहले उससे मुझे प्रेम करना चाहिए, और पत्नी बोलेगी मैं तो स्त्री हूं पहले मुझे प्रेम मिलना चाहिए, तो दोनों ऐसे ही बैठे रहेंगे और किसी को प्रेम नहीं मिलेगा बराबर ना बात ये, हु विल गिव फर्स्ट? नहीं पहले आपको देना है, नहीं पहले मुझे देना है, पहले आपको देना है, नहीं पहले आपको देना है, चलते रहेगा ऐसे ही। तो सबसे पहले मैं दूंगा, ये हमारी भावना होनी चाहिए, आई विल गिव लव फर्स्ट। और आप जब देते हो तुरंत आपको प्रतिसाद में प्रेम मिलेगा। एक दो दोस्तों के बीच में भी यही सच्चाई है। तो पति पत्नी को एक दूसरे के सबसे बड़े मित्र होना चाहिए, ग्रेट फ्रेंड्स टू शेयर द हार्ट। हृदय का सबसे जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो प्रेम है, जो भावना है, व्यक्त करने के लिए बनाई गई जोड़ी है भगवान की। और कलयुग में आमतौर पे 99% लोग विवाह करते हैं, 1-2% लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं। इसलिए समाज में सबसे अधिक नंबर किसका होता है? गृहस्थों का नंबर होता है। इसमें हम सब लोगों को प्रेम देना सीखना चाहिए, अतिथियों की सेवा करना सीखना चाहिए। अतिथि भगवान होते हैं, जो भगवान के प्रतिनिधि के बनके अपने घर पे आते हैं, उनका बड़े प्रेम से आदर सत्कार करना, संतुष्ट करना, उनका आशीर्वाद लेना एक गृहस्थ के लिए बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और गृहस्थों के लिए एक कार्य जरूरी है, वो ये है कि जो हम आमदनी करते हैं, जो धन कमाते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में जरूर देना चाहिए। नहीं तो उस धन का जो प्रभाव है कलह और द्वेष और झगड़े के रूप में होता है हमारे ऊपर, उसका परिणाम होता है। इसलिए नित्य रूप से आपके घर चलाने के लिए आपको धन तो कमाना ही है ना, यू हैव टू अर्न मनी। उसका कुछ हिस्सा हृदय से प्रेम से भगवान की सेवा में आपको अर्पण करना चाहिए, तो आपका धन शुद्ध हो जाएगा। उस धन का अन्न जब आप खाएंगे आपका मन भी शुद्ध हो जाएगा, आपकी आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी, और आपके जीवन में आनंद और शांति का अनुभव आप कर सकते हो। जब तक हमारा धन कमाया हुआ हम भगवान की सेवा में कुछ हिस्सा नहीं लगाते हैं तब तक शांति नहीं मिल सकती है, क्योंकि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। एवरीथिंग, आपकी जो काबिलियत है जिससे आप धन कमाते हैं, आपका डिग्री, एजुकेशन, दिमाग आपका जो भगवान ने आपको दिया है, वो सब उनका ही है। हम कहते हैं हम कमा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दिमाग, शरीर, बुद्धि, वो किसने दिया था आपको? सब भगवान का दिया हुआ है, और दुनिया का साधन भी भगवान ने जोड़ा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, बीज डालते हैं और जल देते हैं, और अपने आप कभी उसमें आम निकलता है, कभी उसमें चीकू निकलता है, कभी उसमें चावल निकलता है। हम लोग क्या करते हैं? सब पृथ्वी माता कर रही है, तो भगवान की शक्ति है, भू शक्ति। ये जानते हुए हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो लालन पालन है, जो पोषण है, मेंटेनेंस है, वो सब भगवान दे रहे हैं, उसमें से कुछ हिस्सा उनको देने में कोई गलत नहीं है, हमारे जीवन के कल्याण के लिए अति आवश्यक है। हमारा धन भी शुद्ध हो जाता है, उस धन का दुष्परिणाम जो है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए हरेक गृहस्थ का कर्तव्य है, चाहे वो हरे कृष्ण का भक्त हो या ना हो, इस इज रूल फॉर ऑल गृहस्थस। आपको लगेगा हम तो हरे कृष्ण नहीं है, तो हरे कृष्ण का प्रवचन चल रहा है, खाली उनके लिए ऐसा नहीं है। जीवन में जो भी पत्नी को स्वीकार करता है उसका एक कर्तव्य है कि भगवान की सेवा में धन को दान करे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपके लिए शुभकामना देता हूं। गुरु महाराज, वैष्णव, राधा कृष्ण भगवान, गौर निताई, सबके बीच में बैठकर मैं आपसे आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि गृहस्थ आश्रम के सभी कर्तव्यों में आप लोग परिपूर्ण हो जाएं और आपका जीवन भक्तिमय आनंद में और भगवान की सेवा में परिपूर्ण हो जाए, संपन्न हो जाए। और सब भक्तों को विनती करता हूं कि मेरे साथ आप 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे और वो हरे कृष्ण मंत्र बोलते हुए आपके मन में इन दोनों के लिए आशीर्वाद की भावना होनी चाहिए। जैसे विवाह संस्कार में बहुत मेहमान आते हैं, क्या करते हैं, अरे शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, साड़ी कौन सी अच्छी आई, ये कितने में लाई आपने, मोबाइल कितने में लाया और कैसे लाया, ये लाया वो लाया, सब दुनिया भर की बातें करते रहते हैं। लेकिन पता है आपको कि विवाह संस्कार में लोगों को बुलाते क्यों है? वो तो अपने घर में दो आदमी मिलके, दो चार आदमी लोग मिलके शादी हो सकती है। एक पुरोहित को बुला लो, घर में छोटे से यज्ञ कर लो, वही विवाह संस्कार है। लेकिन इतने लोगों को बुलाते क्यों है? क्योंकि आप सबका आशीर्वाद वो चाहते हैं। उनके गृहस्थ की शुरुआत में हृदय से आशीर्वाद मिलता है तो लोगों को बहुत उसमें लाभ होता है, इसलिए बहुत लोगों को बुलाते हैं। और दूसरा कारण उसका ये है, ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा लगे नहीं लगे देखिए सुन जरूर लेना। दूसरा उद्देश्य ये है कि भाई वो चर्च में क्या होता है, लड़का लड़की जाते हैं और 3 मिनट का विधि होता है, सामने आ जाते हैं, खड़े रहते हैं, फादर आता है, कुछ पिलाता है, इमीडिएटली मैरिड, फिनिश्ड, गो होम एंड स्टार्ट योर मैरिड लाइफ। और हमारे वैदिक संस्कृति में कैसा होता है, पुराने जमाने में 8-8 दिन तक शादियां होती थी। आज दिन आज ये उत्सव हो रहा है, कल उसका उत्सव है, पर बाद में मेहंदी है, फिर संगीत है, फिर वो है, फिर अभी सत्संग होने वाला है, फिर गांव भोजन होगा, फिर उसके बाद में ये होगा, फिर उसके बाद में ये होगा। 7-7 दिन तक पूरे गांव के लोग वो गीत गाया करते थे, नाच करते थे, अलग अलग विधि करते थे। आज ब्राह्मण से ये विधि हो रहा है, कल ये विधि हो रहा है, आज दक्षिणा हो रही है। तो एक चर्चा हुई थी एक बार की, इतना इंडिया में बड़े पैमाने पे शादियां क्यों करते हैं? कुछ लोग बोलते हैं इसे वेस्ट ऑफ मनी, इतना पैसा खर्च करते हैं क्या लाभ है उसका। तो एक व्यक्ति ने कहा इसका कारण वैदिक दृष्टि से ऐसा है कि वो लोग डिवोर्स ना ले, तो इतने लोगों के सामने इतना बड़ा समारोह हो गया है, किसके लिए हुआ है कि इनकी इनकी शादी हो रही है, इसलिए कई दिन से सब लोग लगे हुए हैं, इतने सारे प्रोग्राम बने हुए, इतना सारा खर्चा हुआ है, इतना सारा गहना दिया है और ये सारा भोजन खिलाया, आज मेन्यू क्या है, कल मेन्यू क्या है, परसों क्या है, इतना सारा आयोजन किया है ताकि लड़का और लड़की समझे कि ये वेरी सीरियस कमिटमेंट, इट्स नॉट जस्ट टाइम पास, आज अच्छा लगा साथ में आए, कल बुरा लगा छोड़ दिया, कोई कुत्ता बिल्ली का खेल नहीं है। विवाह संस्कार कितना सीरियस मामला है, कितना गंभीर कमिटमेंट है, ये समझने के लिए इतना बड़ा आयोजन होता है कई दिन से, ताकि जब विचार मन में आता है ना, मैंने ना गलती किया, मेरा चॉइस ही गलत निकला, उसके बाद में भी बोलेगा कोई बात नहीं, स्टिल मैं भी कुछ परिपूर्ण देवी नहीं हूं या परिपूर्ण देव नहीं हूं, मेरे अंदर भी गलती है, उसके अंदर भी गलती है, चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे। विदेश में ऐसा नहीं है, वन डे यू डोंट लाइक ईच अदर, नेक्स्ट डे आउट। वो आपको पता नहीं, उनके उनके घर में जब वो वार्षिक बनाते ना बजट अपना खर्चे का, तो उसमें रहता है डिवोर्स बजट, पता नहीं इस साल में कब डिवोर्स होगा, तो उसका बजट रहता है, अगले साल की शादी का बजट भी रहता है। इस इज अ फैक्ट, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, इस इज अ रियल फैक्ट। लॉयर आपको हेल्प करता है कि आपका डिवोर्स बजट और मैरिज बजट कैसा इंटैक्ट रहे, ताकि आपको जितना चाहे शादी आप कर सकते हो, तोड़ भी सकते हो, डोंट वरी आई विल एडजस्ट एवरीथिंग फॉर यू। ये हमारा संस्कृति नहीं है, हमारा संस्कृति मतलब ग्रंथि बंधन का एक विधि होता है शादी में, हाँ, तो ग्रंथि बंधन मतलब क्या, एक ही बार गांठ मारना है, लाइफ लॉन्ग छोड़ना नहीं है उसको। मैं भी पुरोहित हूं, मैं भी विवाह करता हूं, कल ही एक विवाह करके आया हूं। तो मैं क्या कहता हूं कि ये लॉक मैं लगा रहा हूं, इसकी चाबी मैं लेके जाऊंगा, ये मेरे पास रहेगी, और जब दिल करेगा समुद्र में फेंक दूंगा चाबी को। आपको जीवन भर बंधे रहना है। वैदिक कल्चर का मतलब लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप, मरते दम तक। वो हमारा बहुत ही क्या कहते हैं रिच लाइफ है, इट्स अ वेरी रिच हैप्पी ब्लिसफुल लाइफ ऑफ गृहस्थ आश्रम। वो हमको समझना है। ये तो कुत्ता बिल्ली कैसे, आज एक पार्टनर का दूसरा पार्टनर हो, याद भी रहता नहीं कौन किसके साथ क्या है। बच्चों को भी याद रहता नहीं किसका हमारे माँ बाप कौन है, ना कुत्ता का याद रहता है कि मेरी पत्नी कौन है, ना कुत्ते का याद रहता है कि मेरा पति कौन है। दिस इज एनिमल लाइफ, और हमको एनिमल लाइफ से उठना है और मनुष्य लाइफ जीना है। वी हैव टू लर्न टू लिव ह्यूमन लाइफ, नॉट एनिमल लाइफ। इसलिए त्याग, एडजस्टमेंट, फॉरगिविंग, माफ करना, क्षमाशीलता, ये सब गुणों को हमको अपनाना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है और राधा राधा नाथ से सिंसियरली प्रार्थना करना है कि आपकी कृपा इन पर बरसे और इनका गृहस्थी जीवन सफल बने। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और छोटी सी बात है, लास्ट पॉइंट, कि विवाह संस्कार होने के बाद में आपको गाय की सेवा करना चाहिए। तो जब गाय की सेवा करते हैं तो सारा मन का चिंता, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन सब निकल जाता है, और जितना भी शुद्धता है और पवित्रता है वो हमारे जीवन में प्रवेश करता है। जब गाय की सेवा होती है तो सब जो कलमश है वो नष्ट होता है, जो जीवन में आनंददायक है, आवश्यक है, वो प्रवेश करता है। तो जरूर आप समय निकालकर थोड़ी बड़ी जो आपकी क्षमता है वैसे गाय की सेवा करना। और जब भी आपको लगेगा कि आपके लाइफ में टेंशन आ रहा है, आप गौशाला में जाना और गाय के साथ कुछ समय बिताना। ये हकीकत है, आप अनुभव कर सकते हैं। जब भी आपको बहुत टेंशन आता होगा तो आप गौशाला में जाइए, थोड़ा समय गाय के साथ बिठाइए, उसके चरण दबाइए, उसके बदन पे हाथ घुमाइए, थोड़ा वो चारा खिलाइए और आइए घर पे। केवल उसके सानिध्य में होने से ही सारा मन की चिंता जो है वो नष्ट हो जाती है। अगर आपके अंदर कोई मनोरुग्ण है, कोई मेंटल बीमार आदमी है, तो गौशाला में रेगुलरली लेके जाया करो। वो गाय की कृपा से उसका मन का जो विकार है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, इतनी शक्ति है उसके अंदर। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच। हरी बहुत।